समुद्र का प्रस्ताव भगवान को अच्छा लगा। समुद्र देवता चले गए और भगवान श्री रामचंद्र ने सुग्रीव इत्यादि को आदेश दिया कि अब समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य प्रारंभ कीजिए। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ने आदेश दिया, गोस्वामी ने सुंदर कांड को यहां पर समाप्त किया और लंका कांड प्रारंभ करते हैं। अब तेज गति में तो कोई कथा इसी प्रकार होगी। बाल कांड में 5 दिन निकल गए और बाकी के कांड में 2 दिन। खैर, फिर कभी आराम से सुनेंगे। लंका कांड का प्रारंभ होता है, नल नील द्वारा सेतु बनाया जा रहा है। बड़े बड़े वानर, बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, वृक्ष को ला लाकर उस समुद्र में डाल रहे हैं। सब लोग लगे हैं, सब लोग मेहनत में हैं। भक्तों, उस समय एक छोटी सी गिलहरी जानते हैं, गिलहरी गुजराती में क्या कहते हैं, खिसकोली। गुजराती वाले खिसकोली और हिंदी वाले गिलहरी। तो एक छोटी सी गिलहरी थी, वो भी राम की सेवक थी, राम की भक्त थी, और उसने सोचा कि भगवान राम की सेवा सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी सेवा करूंगी। तो गिलहरी भी, अब सब लोग अपनी अपनी शक्ति से बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों को उठाकर लाकर डाल रहे थे। अब गिलहरी तो छोटी सी पशु है, तो वो छोटा सा रेत का दाना लेकर उस समुद्र में डालती थी। अब होता क्या था, जब वो छोटे छोटे दाने लेकर समुद्र में डालती थी, तब ये जो बड़े बड़े वानर थे उनके पाँव में ये आ जाती थी और सबको डिस्टर्ब होता था, ये पाँव में आ गई, ये गिरा। कुछ लोग गिरते थे, कुछ लोग को डिस्टर्ब होता था, तो गिलहरी को खड़ा रखा, ए तो हमको डिस्टर्ब क्यों कर रही है, हम लोग इतने बड़े बड़े पहाड़ पत्थर को लाकर डाल रहे हैं, हम लोग तेरे कारण गिर रहे हैं, तेरे कारण देख देख कर चलना पड़ता है। बोले, आप लोग भगवान की सेवा कर रहे हो, मैं भी भगवान की सेवा कर रहा हूं। बोले, तू क्या सेवा करेगी, ये छोटा छोटा दाना डाल रही है, तेरे बदले मैं एक पहाड़ डाल देता हूं तेरे नाम का, तू बाजू में बैठ। संसार में कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो छोटी छोटी सेवा में लगे होते हैं, फूल माला बनाना और मंदिर में झाड़ू लगाना या छोटी छोटी सेवा। और कभी कभी जो हमारी तरह रजोगुणी होते हैं, उनको लगता है ये नड़ रहे हैं, ये साइड में हो जाए तो अच्छा है। परंतु रामायण सिखाती है कि छोटी सी छोटी सेवा भी भगवान को प्रसन्न कर लेती है। फिर भी गिलहरी ने अपना काम छोड़ा नहीं, वो तो छोटे छोटे पत्थर को लेकर डाल रही थी और सबके पाँव में आ रही थी। ये लोग टेंशन में आ गए, जितने भी वानर थे। भगवान राम को जाकर कंप्लेंट किया, सुग्रीव जी को बताया, सुग्रीव जी ने कहा ये निर्णय भगवान लेंगे, प्रभु की कोर्ट में ये केस गया। भगवान राम बैठे थे, गिलहरी एक पत्थर के ऊपर बैठी थी और यहां पर सब लोग कंप्लेंट कर रहे थे, प्रभु ये हमको परेशान कर रही है, जो काम 3 दिन में होने वाला है ये 3 साल लगाएगी, इसलिए आप इसको कहिए हमें नड़े नहीं, ये साइड में बैठे। भगवान ने गिलहरी को कहा कि क्यों परेशान कर रही हो। बोले, प्रभु जैसे ये लोग सेवा कर रहे हैं वैसे मैं भी सेवा कर रही हूं। बोले, वानर लोग कहने लगे, अरे हम तो बड़े बड़े पहाड़ पत्थर, कितने क्विंटल के पहाड़ लाकर डाल रहे हैं और ये छोटा छोटा दाना। भगवान ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो। गिलहरी ने इतना ही कहा कि प्रभु ये लोग बड़े बड़े पहाड़ पत्थर समुद्र में डाल तो रहे हैं, परंतु दोनों पत्थर को जॉइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए बीच में जगह छूट जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दाना डालकर उस जगह को भी बंद कर दूं ताकि वह पक्का हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए गिलहरी पर, वाह गिलहरी वाह। भगवान प्रसन्न होकर अपना हाथ गिलहरी के ऊपर मारने लगे, वाह वाह तेरी सेवा तो अद्भुत है। भक्तों, भगवान की 3 उंगली उस गिलहरी के ऊपर पड़ी, आज भी आप गिलहरी को देखिए, उनकी पीठ पर 3 उंगली है भगवान श्री रामचंद्र की है। और उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने गिलहरी को उठाकर अपने कंधे पर बिठा दिया, गिलहरी आज से तेरा स्थान इस पत्थर पे नहीं, आज से तेरा स्थान मेरे शरीर पर है। भगवान के शरीर पर कूदती थी, खेलती थी, भगवान को पा गई ये छोटी सेवा करने से। ये भगवान की भक्ति का नियम है। इस जगत में जो सबसे छोटा कार्य है भगवान के धाम में, वो सबसे बड़ा कार्य है। इस दुनिया में सबसे छोटा कार्य क्या है? झाड़ू लगाना। झाड़ू वाले को स्पर्श हो जाए फिर भी ना लेते हैं, झाड़ू मारना निम्न शुद्र कार्य माना जाता है। लेकिन वही कार्य भगवान के धाम में सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। तो इस प्रकार गिलहरी की यह सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो गए। बहुत सुंदर समुद्र सेतु बन रहा था, धीरे 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 सेतु बढ़ रहा था। भगवान रामचंद्र बैठे बैठे, अब क्या करे, ऐसे ही बैठे बैठे कुछ काम धंधा है नहीं। तो भगवान के मन में हुआ कि ये लोग पत्थर तैरा रहे हैं, चलो मैं भी कुछ तैरा हूं। भगवान श्री रामचंद्र एक पत्थर को उठाए, भगवान ने कहा ये वानरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, थोड़ा दूर जाकर जरा देख लूं। भगवान पत्थर उठाए और वहां नल और नील भगवान का राम नाम लिखकर पत्थर को समुद्र में डालते थे, तैरने लगता था। भगवान ने सोचा मैं खुद राम हूं, मुझे मेरा नाम लिखने की क्या जरूरत है। भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और उठाकर समुद्र में ये रखा, रखते ही समुद्र में डूब गया। भगवान राम तुरंत आजू बाजू में देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा है, ये तो कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा कि प्रभु में कोई पराक्रम नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज पीछे देख रहे थे और हंस रहे थे। हाँ, भगवान ने कहा हनुमान जी महाराज किसी को बताना मत, नहीं तो कचरा हो जाएगा, वहां मेरा गुणगान हो रहा है, सब लोग मेरा नाम ले रहे हैं, जय श्री राम बोलकर, और मैं खुद पत्थर डाला तो डूब गया। वास्तव में यहां पर साबित हो गया, भगवान से भी बड़ा यदि कोई संसार में है तो वह है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान से हरि से बड़ा है हरि का नाम। और कलयुग में तो नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। कलयुग में कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कृष्ण का और राम का अवतार किस में हुआ है? भगवान के नाम के रूप में। भक्तों भागवत में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि परीक्षित महाराज को पता था ये कलयुग आया है, और परीक्षित चाहते तो कलयुग को उसी समय इस दुनिया से निकाल सकते थे। यदि महाराज परीक्षित चाहते तो हम सब लोग आज कलयुग में नहीं, आज सतयुग में होते। महाराज परीक्षित में शक्ति थी, परंतु महाराज परीक्षित जानते हुए भी कलयुग का स्वागत किए। क्यों? कले दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण। कलयुग में बहुत दोष है, पदम पदम यत विपदा, कदम कदम पर पाप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी परीक्षित ने कलयुग को क्यों इस दुनिया में आने दिया, कारण क्या है? परीक्षित महाराज ने एक गुण देखा इस कलयुग में, अस्ति एको महान गुण। एक महान गुण अस्ति इस कलयुग में, एक महान गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अन्य युगों में सतयुग में हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान करोगे फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं, त्रेता युग में हजारों हजारों यज्ञ करो लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं, द्वापर युग में अनेक धन पैसे खर्च करके परिचर्या करो भगवान नहीं मिलते हैं, परंतु वही भगवान कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से मिल जाते हैं। यह गुण देकर महाराज परीक्षित ने कलयुग का स्वागत किया, कलयुग को आने दिया। क्यों? कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेकर भगवान मिलते हैं, परंतु कौन सा नाम? कृष्ण का नाम, राम का नाम। साक्षात भगवान इस दुनिया में आए, और राम और कृष्ण, क्योंकि ये दोनों उपास्य भगवान हैं, इनकी पूजा, क्योंकि इसी रूप में भगवान के सारे रूप निहित है। कुछ लोग कहेंगे हम परशुराम का नाम नहीं जप सकते हैं, हम गणेश जी का नहीं जप सकते हैं, शिव जी का नहीं जप सकते हैं, हम ये देवी का ये देवता का नाम नहीं जप सकते हैं। आप कितने देवी देवताओं का नाम जपोगे? 33 करोड़ है, कभी अंत नहीं होने वाला है। इसलिए रामायण और भागवत में सीधा कह दिया गया कि भगवान कृष्ण राम ये सभी भगवान के मूल है। ये भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं ये राम और कृष्ण से हुए हैं। यथा तरोमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंज भुजोपशाखा। जैसे किसी वृक्ष को आपको बड़ा करना है तो वृक्ष के जड़ में पानी डालना होगा। यदि पत्ते पर पानी डालोगे, डालियों पर पानी डालोगे तो पानी नहीं मिलेगा वृक्ष को। ठीक उसी प्रकार देवी देवता पितृ गंधर्व किन्नर मनुष्य ये सबको आप सुखी करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये सब के मूल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की भक्ति कीजिए। ये सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सब लोग तुष्ट हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मुझे ये नड़ रहा है, ये ग्रह नड़ रहा है, ये ग्रह नड़ रहा है, परंतु ये सारे ग्रह जो हैं भगवान के दास हैं। और यदि कोई आप भगवान राम और कृष्ण की भक्ति करते हो तो सारे ग्रह से मुक्त हो जाते हो। इसलिए कलयुग में यदि भगवान का नाम लेना है, महामंत्र हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
देखते ही देखते वह समुद्र पर सेतु का कार्य समाप्त हुआ, समुद्र पर सेतु बन गया और भगवान श्री रामचंद्र अब इस सेतु को देखकर परम प्रसन्न हो गए। और भगवान राम लखन सुग्रीव जी समुद्र के ऊपर अब प्रवेश कर रहे हैं और सारे वानर भगवान के पीछे पीछे, सब लोग भगवान के साथ चलना चाहते हैं। सबकी इच्छा है कि हम भगवान का दर्शन करें। भगवान रामचंद्र का रूप इतना सुंदर मधुर था, सब लोग भगवान को देखना चाहते थे और सब लोग भगवान के पीछे चल रहे हैं। उस समय गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर घटना का वर्णन करते हैं। भगवान जब समुद्र के उस सेतु के ऊपर अपना चरण रखा, भगवान राम का दर्शन करने के लिए वानर तो उत्साहित हो ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ समुद्र में रहने वाले सभी जलचर, सभी हिंसक प्राणी समुद्र से बाहर निकल गए और बाहर निकलकर उस समुद्र का जो सेतु था वहां पर अपना मुख रखकर बैठ गए भगवान को देखने के लिए। भक्तों, समुद्र का सेतु बहुत छोटा था। वैसे उसकी चौड़ाई लंबी नहीं थी तो ऐसे बहुत पतला था, परंतु ये बहुत सारे समुद्र के अंदर से जलचर जीव निकले। मकर नक्र ना ना इस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। सात सात योजन के बड़े बड़े डॉल्फिन, शार्क, तिमिंगल, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मगर, छोटी छोटी मछलियां, छोटे छोटे सर्प, कछुए, ये सब लोग समुद्र के बाहर आए। क्यों? क्योंकि आज पूरे समुद्र में यह खबर फैल गई, भगवान राम हमारे ऊपर से होकर जा रहे हैं, भगवान को देखने के लिए सब लोग खड़े रह गए। और यहां तक कि जितने जलचर हिंसक प्राणी थे, समुद्र का एक नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसका भोजन है। बड़े बड़े मगर मनुष्य और बंदर को खा जाते हैं, इसका नियम है, ये प्रकृति है, ये इसका स्वभाव है। लेकिन आज सभी वानर भगवान के साथ चलना चाहते हैं। ये समुद्र जो है बहुत पतला, सेतु बहुत पतला है, सब लोग भगवान को देखने के उत्साह में किसी का पांव मगर के ऊपर हो जाता था, पतला था, कोई मछली के ऊपर पांव रख देते थे, ये जलचर जीवों के ऊपर पांव रखकर चलने लगे सब लोग। और आज जलचर ये सभी हिंसक जीव अपना स्वभाव छोड़ दिए, नहीं तो मगर बंदर को देख कर नहीं रखता, तुरंत खा जाता है, देखते ही खा जाता है, छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है। लेकिन आज ये लोग अपने स्वभाव को भूल गए। भक्तों, यहां पर बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित हो रहा है। इस संसार में कभी कभी कुछ लोग अपना स्वभाव जल्दी छोड़ नहीं सकते हैं। यहां तक कुछ लोग कंठी तिलक धारण कर लेते हैं, भक्त बन जाते हैं, अपने आप को भक्त कहलवाते हैं, परंतु पूर्व जन्म की सुकृति, पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण भक्ति में आकर भी उनका स्वभाव छूटता नहीं है। भक्ति में आकर भी, भक्त बनकर भी उनका स्वभाव बिगड़ा रहता है। इसका कारण यह है कि हम भगवान को ठीक से देख नहीं रहे हैं, हम भगवान की ठीक से भक्ति नहीं कर रहे हैं। यहां पर इतने हिंसक जीव होने के बाद भी भगवान को देख रहे हैं, सबका लक्ष्य एक है, इसलिए अपना स्वभाव भी छोड़ दिए, सबका स्वभाव ही समान हो गया। लेकिन आज हमारा स्वभाव सुधरा नहीं है, इसका कारण यह कि हम हमारे लक्ष्य से चूक रहे हैं। हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, वह है कृष्ण प्रेम। परंतु आज कुछ लोग एक ही धर्म में, एक ही संप्रदाय में, एक ही मत में रहकर भी लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, अलग अलग पंथ बना लेते हैं। इसका कारण एकमात्र भगवान की भक्ति की कमी है। यदि लक्ष्य एक हो तो इस प्रकार से भेद नहीं हो सकता है। परंतु भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं होने के कारण संसार में झगड़ा और क्लेश हो रहा है। यहां पर सब के अंदर, सब के हृदय में प्रेम है और भगवान को देखते देखते भगवान उस समुद्र सेतु को पार कर लिए। सेतु को पार करके भगवान श्री रामचंद्र लंका नगरी में पर्वत की कंदरा में अपना डेरा डाले हैं। एक रात तक वहां पर रुके, दूसरे दिन सुबह भगवान श्री रामचंद्र को अभी भी मन मान नहीं रहा है। भगवान के मन में है कि अभी भी शांति से यदि काम बन जाए तो युद्ध नहीं करना है। भगवान ने जामवन जी को बुलाया, विभीषण को बुलाया और बुलाकर मंत्रणा की। ऐसा नहीं कि खुद डिसीजन अकेला ले लिए, चार पांच बुद्धिमान लोगों को पूछा क्या किया जाए। बोले मेरी इच्छा है युद्ध ना हो। विभीषण और जामवन जी ने कहा एक काम करते, रावण को एक चांस देते हैं, हम एक दूत को भेजते हैं, अभी भी यदि शायद समझ जाए। बोले किसको भेजा जाए? जामवन जी कहते हैं अंगद जी को भेजिए। तब अंगद जी को तैयार किया, बाली पुत्र अंगद तैयार हुआ। अंगद जी जब रावण की लंका में गए, हनुमान जी गए थे तो बहुत लोग नड़े थे, लंकिनी नड़ी थी और भी बहुत सारे अनुचर, लेकिन अंगद जी जब प्रवेश किए सब लोग अंगद जी को रास्ता दे दिए, हाईवे हो गया, सब लोग स्वागत स्वागत करते करते सीधे निकल गए। अंगद जी को समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सब लोग मन में यही सोच रहे थे कि इसके पहले जो वानर आया था पूरी लंका को जलाकर चला गया, फिर से प्लास्टर करना पड़ा, फिर से घर बांधना पड़ा, घर से थोड़ा सा ईंधन दे दिया था तो हमारा पूरा घर तहस नहस हो गया, हम तो इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। सब लोग रास्ता दे दिए, अंगद जी रावण की सभा में चले गए। रावण ने कहा कौन है तू? रावण ने, अंगद जी ने कहा मैं बाली का पुत्र हूं। बोले कहां है बाली, तेरा पिता क्या कर रहा है? बोले मुझे कहने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द तुम उनके पास चले जाओगे, फिर तुम ही अपने मुंह से ही पूछ लेना कैसे हो, बहुत जल्द तुम्हें उनके पास जाना ही है यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो। अंगद जी ने बहुत सुंदर, बहुत पराक्रमी थे अंगद जी, बहुत सुंदर प्रवचन किया कि रावण अभी भी समय है, प्रभु आ चुके हैं, सीता को वापस लौटा दो। रावण माना नहीं। रावण ने कहा हम राम के साथ युद्ध करेंगे। अंगद ने कहा राम के साथ क्या तुम लोग युद्ध करोगे? उसी समय अंगद जी ने अपने पांव को रावण की सभा में चाप दिया और अंगद जी ने कहा राम के साथ क्या युद्ध करोगे? राम के दास के इस पांव को हिलाकर बता दो, एक इंच भी यदि यह पांव हिल गया मैं गारंटी देकर जाता हूं प्रभु उस समुद्र किनारे से ही वापस लौट जाएंगे, हम सीता को यहां पर छोड़कर चले जाएंगे। रावण के, राम प्रभु के साथ क्या युद्ध करोगे? दास के साथ युद्ध करके दिखाओ। अंगद जी ने अपना पांव चाप दिया और सीता को दांव पर लगा दिया। मन में प्रश्न होता है अंगद जी यदि किसी राजा से यदि थोड़ा भी हिल गया होता तो भगवान को क्या मुंह दिखाते? परंतु अंगद जी को भगवान, अपने से ज्यादा भगवान पर विश्वास था कि मैं राम का दास हूं और प्रभु का नाम लेने वाले को कभी भी प्रभु अपयश नहीं देते हैं। गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, हे अर्जुन मेरा नाश होगा, मैं मेरी प्रतिज्ञा को एक बार तोड़ दूंगा परंतु मेरे भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ने दूंगा। और भगवान ने कहा नहीं, उसी महाभारत के युद्ध में भगवान ने दिखा दिया भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए। उठा लिया शस्त्र हाथ में। तो इस प्रकार अंगद जी को भगवान पर विश्वास था। सभी राजा महाराजा आए अंगद जी के उस पांव को हिलाने के लिए, कोई हिला नहीं पाया। तब रावण ने सोचा चलो मैं चलता हूं, यदि इसके पांव के हिलाने से काम बन जाए तो युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग वहीं से वापस चले जाएंगे। रावण खड़ा हुआ और खड़ा होकर चलते हुए अंगद के पास गया और झुक कर रावण जैसे ही अंगद के पांव को पकड़ने गया, अंगद जी ने पांव उठाकर लात मार दी। अरे मूर्ख, तुझे चरण पकड़ना ही है, भगवान श्री रामचंद्र के चरण पकड़, तुझे बलिदान दे देंगे, मेरे जैसे के चरण क्यों पकड़ रहा है। परंतु रावण माना नहीं। अंत में अंगद जी वापस आए, भगवान ने पूछा बताओ अंगद क्या हुआ। अंगद ने कहा प्रभु अब रावण को कोई नहीं मना सकता है, आपका बाण ही अब रावण को मना सकता है। ये फाइनल डिसीजन दे दिया अंगद ने। और फिर भगवान श्री रामचंद्र तैयार हुए। अब युद्ध अवश्यंभावी हुआ और भगवान श्री रामचंद्र ने अपने समस्त सैनिक को तैनात किया। भगवान राम ने अपनी सेना के चार विस्तार किए, चार टुकड़ों में बांट दिए। रावण की लंका में चार द्वार थे, विभीषण जी ये सब कुछ बता दिए थे। लंका में चार द्वार हैं, भगवान राम ने अपनी सेना के चार हिस्से किए और चारों द्वार में भगवान ने अपने अपने सैनिकों को भेज दिया। भगवान श्री रामचंद्र की सेना तैयार हो चुकी है। रावण की लंका के चार द्वार है और भगवान राम ने अपनी सेना के चार भाग करके चारों भागों में अपनी सेना को बांटा है। रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं प्रथम दिन में ही भगवान श्री रामचंद्र की सेना ने रावण की आधी सेना को विध्वंस कर दिया। युद्ध के पहले ही दिन में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई और रावण से रहा नहीं गया। रावण क्रोधित होकर अपनी सेना को बचाने के लिए इस युद्ध के दूसरे दिन मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत आए रण मैदान में और उस समय इंद्रजीत मेघनाद के सामने लक्ष्मण का सामना हुआ। लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध होते होते मेघनाद ने धमाधार एक बाण का इस्तेमाल किया, जो बाण लक्ष्मण के शरीर में लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रामायण के इस युद्ध की यह विशेषता थी, युद्ध के बाद दोनों सेनाओं से अपने अपने अनुचर आते थे और अपनी अपनी सेनाओं की लाश को लेकर चले जाते थे। यहां भगवान के पक्ष से हनुमान जी महाराज सबसे अंतिम में जाते थे। हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के मूर्छित विग्रह को उठाकर भगवान के पास लाए और मूर्छित देखकर, रात का समय है, अंधेरी रात है और लक्ष्मण जी आज मूर्छित हुए हैं, क्या किया जाए। विभीषण जी ने कहा कि महाराज हमारी इस लंका में सुषेण नाम का एक वैद्य है जो बहुत सुंदर इलाज को जानता है, आप उनको बुलाकर आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र ने उस समय हनुमान जी महाराज को भेजा, आप जाओ और इस सुषेण वेद को लेकर आओ। हनुमान जी महाराज गए, सुषेण वेद को नहीं, सुषेण वेद के पूरे घर को उठाकर लेकर आए। भगवान राम ने कहा था हनुमान जी महाराज मात्र वेद को लाने के लिए कहा था, घर को लाने नहीं कहा था। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि मात्र वेद को लाया होता और फिर कहा होता इंजेक्शन घर पर भूल गया, वापस उसके घर पर कौन जाए, पूरे डिस्पेंसरी को ही लेकर आया हूं, जो भी इलाज होगा यहीं पर होगा, ये दवाई और सब ले जाने के लिए कोई जरूरत नहीं होगी। सुषेण नाम के वैद्य ने लक्ष्मण जी का इलाज करते हुए कहा बहुत दुख की बात है, प्रभु लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से मूर्छित हुए हैं और इनको जीवित करना बहुत मुश्किल है। बोले कोई तो उपाय बताइए। बोले एक उपाय है परंतु असंभव, अशक्य, इम्पॉसिबल। बोले उपाय तो कहिए। तब सुषेण वैद्य ने कहा, यदि संजीवनी जड़ी बूटी सूर्य उदय होने से पहले यहां पर लाया जाए, संजीवनी बूटी का लेप लगाया जाए, तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं, नहीं तो कल सुबह सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण जी की मृत्यु निश्चित है, लक्ष्मण जी मरेंगे। बोले, यह संजीवनी जड़ी बूटी कहां मिलेगी, यह संजीवनी बूटी कहां मिलेगी? तब सुषेण वैद्य ने कहा, यही तो दुख की बात है, यह संजीवनी बूटी भारत में और भारत में भी हिमालय में मिलेगी। अब प्रश्न उठा, लंका में बैठे हैं, भारत में जाना है और सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी को लाना है। बोले, कार्य कौन करे, कौन करे? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं जाऊंगा। देखिए, राम का दास हनुमान जी महाराज तैयार हुए और हनुमान जी महाराज को सुषेण वैद्य समझा रहे हैं कि जड़ी बूटी ऐसी होती है, जरा सोच समझ कर लाइएगा। और हनुमान जी महाराज जब निकल रहे थे, तब भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि हनुमंत जरा याद रखिएगा, वेद ने कहा है सुबह होने से पहले। हनुमान जी ने कहा, महाराज आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहुंच जाऊंगा, और यदि नहीं पहुंचा तो सूर्य को खाने की प्रैक्टिस है, सूर्य को ही खा जाऊंगा, सूर्य का उदय ही नहीं होगा, महाराज आप चिंता मत कीजिए। बचपन में हनुमान जी महाराज सूर्य को खाने के लिए निकले थे। हनुमान जी महाराज वहां से चले, पवन तनय बल पवन समाना, पवन के समय समान हनुमान जी की गति, और इस समय तो तेज गति से हनुमान जी महाराज गए संजीवनी बूटी को देखे ढूंढे। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि एक दो बूटी नहीं, पूरा पहाड़ ही उठा लो। हनुमान जी महाराज पूरा पहाड़ उठाकर आकाश के मार्ग से लंका की ओर जा रहे हैं। नंदीग्राम में जाते हुए भरत जी ने देखा कि ये कोई राक्षस लगता है। भरत जी ने एक तीर मारा, हनुमान जी के चरण में लगा, हनुमान जी की गति रुक गई, गिर गए। बोले, कौन हो? बोले, हनुमान हूं। बोले, क्यों? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, उनके लिए संजीवनी लेकर जा रहा हूं। भरत जी बहुत दुखी हुए, एक तो दुखी थे ही, मरे हुए को मारने के समान हो गया, जले के ऊपर नमक छिड़कने के समान भरत जी के हृदय में दुख हुआ। हनुमान जी महाराज फिर से गए और सूर्य उदय होने से पहले हनुमान जी महाराज पहुंच गए लंका में। लेकिन जामवन जी ने पूछा, महाराज एक दो जड़ी बूटी के पत्ते लाए होते तो ठीक था, पूरा पहाड़ उठा कर लाए? हनुमान जी ने कहा, देखो एक दो जड़ी बूटी से लक्ष्मण जी को जीवित कीजिए और बाकी ये जो हैंडीकेप हो गए उनको जीवित कीजिए, सबके लिए होलसेल में लाया हूं, सबको खड़ा कर दीजिए। हनुमान जी महाराज होलसेल के व्यापारी थे, उनको थोड़ा बहुत नहीं जमता था। आगे कथा आती है ना, जब भगवान श्री रामचंद्र राजा बन जाएंगे और राजा बनने के बाद हनुमान जी 24 घंटा भगवान राम के साथ रहते थे। अब अयोध्या के रहने वालों के नाक में दम हो गया कि हमें तो भगवान की सेवा का मौका ही नहीं मिलता है, ये सारी सेवा हनुमान ही कर लेता है। एक दिन कुछ काम के लिए हनुमान जी बाहर गए थे, ये सारी प्रजा ने राम सेवा कमेटी बनाई और भगवान की जितनी भी सेवा थी सब लिख ली और उसके सामने सबका नाम लिख लिया, सबने अपनी अपनी सेवा बांट ली। हनुमान जी महाराज आए, बोले आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। बोले, क्यों? मैं तो राम की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। बोले, सारी सेवा बट गई है, इसमें आपका नाम है? बोले, नहीं है, इसमें यदि नाम होता तो आप जा सकते हैं, यदि ये स्वयं सेवकों में से जो अपना नाम खींच लेता है वहां पर आपका नाम रख लेंगे। बोले, सारी सेवा बढ़ गई? बोले, हाँ सारी सेवा, जरा लिस्ट दो मैं पढ़ लू। हनुमान जी ने पूरा लिस्ट पढ़ा, बोले एक सेवा छूट गई है। कमिटी वाले आपस में झगड़ा करने लगे, मैं कह रहा था बुद्धि लगा कर लिखो, एक भी सेवा छोड़ो मत। बोले, हमने सारी बुद्धि लगाई थी। हनुमान जी ने कहा, एक सेवा छूट गई है। बोले, कौन सी सेवा? बोले, आपने सारी सेवा लिखी है परंतु भगवान राम को जम्हाय आए और तब चुटकी बजाने की सेवा आप लोगों ने नहीं लिखी है। और देखो ये जमाई का कोई भरोसा नहीं है, ये जमाई कभी भी आ सकती है, इसलिए 24 घंटा साथ में रहना पड़ेगा। तब से हनुमान जी 24 घंटा साथ, पूरा दिन बीता और शाम हुई, रात को 8 बजे देवी सीता आई, हनुमान जी को कहा कि प्रभु अब आप चलिए। हनुमान जी अब क्या समझे, सीता जी ने कहा आप जाओ अपने घर पर, अब मेरी सेवा का समय हुआ है। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सीता जी ने कहा कि देखो कुछ समझने का प्रयास करो, ये शाम की सेवा पत्नियों की होती है, दिन को तुम करना, तुम चले जाओ। हनुमान जी ने कहा मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। ये बाल ब्रह्मचारी क्या समझे सीता जी क्या कहना चाहती है, बार बार सीता मना रही है, हनुमान नहीं मान रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, सीता जी ने कहा कि देखो रात की सेवा हम लोग कर सकती हैं, आप नहीं कर सकते हैं, आप लोग दिन की सेवा करना। हनुमान जी ने कहा ऐसा तो मुझ में क्या कमी है, मेरे में कमी क्या है, मैं रात की सेवा नहीं कर सकता हूं और तुम कर सकते हो। अब सीता जी क्या समझा है, तब हनुमान जी को लेकर एक कांच के सामने गए और सीता जी ने समझाने हुए कहा कि महाराज ये मेरे सिर पर सिंदूर देख रहे हो। बोले हाँ। बोले आपके सिर पर है। बोले नहीं। बोले बस मेरे सिर पर सिंदूर है इसलिए मैं रात की सेवा कर सकती हूँ, आपके सिर पर नहीं है इसलिए आप नहीं कर सकते हो, चलो निकलो। हनुमान जी नाराज हो गए बेचारे, नाराज होकर वहां से निकल गए। परंतु भगवान के विरह में रात भर हनुमान जी को नींद नहीं आई, यहाँ भगवान को भी नींद नहीं आई, और राह देख रहे थे कब ये बनिया वाला दुकान खोले। सुबह बनिया की दुकान में जाकर उस बनिए की दुकान में जितना भी सिंदूर था सारा सिंदूर ले लिया, वहां पैसे चुकाने की जरूरत नहीं हनुमान जी को, सारा सिंदूर लिया, एक बाल्टी में पानी डाला, सारा सिंदूर डाला और पूरा सिंदूर से स्नान करके अयोध्या के उस भगवान राम के दरवाजे पर आकर बैठ गए। देवी सीता ने सुबह दूध लेने के लिए दरवाजा खोला होगा, सुबह सुबह देवी सीता ने दरवाजा खोला, हनुमान जी महाराज सिंदूर में स्नान करके बैठे थे। बोले महाराज आज न तो होली है न धुलेटी है, आज कोई उत्सव नहीं है, आज कोई त्यौहार नहीं है, आप इस प्रकार से रंग में स्नान करके बैठे हो। हनुमान जी महाराज ने इतना ही कहा तुम क्या समझती हो, इतना सा सिंदूर लगाकर रात की सेवा ले ली, मैं पूरा सिंदूर में स्नान कर लिया जीवन भर तक सेवा करता रहूंगा, मैं सेवा छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरा सिंदूर में स्नान, दास हो तो ऐसे। हनुमान जी महाराज की दासता अद्भुत। जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या पे विजय प्राप्त करके, लंका में विजय प्राप्त करते करके अयोध्या के राजा बने, हजारों प्रजा, हजारों की प्रजा के बीच में सबको उपहार दिया जा रहा था, पारितोषिक सबको अवार्ड दिया जा रहा था कि राम को युद्ध करने में इस व्यक्ति ने बहुत, जैसे अभी फोटो दिया ना वैसे, इसकी बहुत अच्छी मदद मेहनत रही, सबको अरे महामंत्र बोलिए, वैसे सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे, भगवान राम गिफ्ट दे रहे थे। ये देते देते हनुमान जी का टर्न आया, हनुमान जी महाराज स्टेज पर आए, भगवान राम परम प्रसन्न हुए, हनुमान जी ने बहुत मदद की, बहुत मेहनत की, भगवान ने तो कुछ उपहार दिया, परंतु देवी सीता ने सोचा कि सबसे ज्यादा हनुमान जी ने मेहनत की है, सीता जी के गले में 9 रत्न का हार था वह निकालकर हनुमान जी के गले में डाल दिया। अब ये हार की कथा, ये सबसे पहले कुबेर जी के पास था, उसके साथ युद्ध करके रावण ने लिया, अपनी तिजोरी में रखा, रावण जब मरा तब विभीषण ने अपनी तिजोरी में रखा और विभीषण जी ने भगवान रामचंद्र को दिया, भगवान रामचंद्र ने सीता जी के गले में डाला और सीता जी ने वह नवलखा हार हनुमान जी के गले में डाल दिया। अब विभीषण जी भी बैठे हैं, उसको तो एक हार्ट अटैक आ गया कि इतना सुंदर हार मैंने प्रभु को दिया था, उसने एक वानर को पहना दिया। सब लोग देख रहे हैं हनुमान जी महाराज वह नवलखा हार लेकर अपने स्थान पर चले गए, लेकिन अपने स्थान पर जाकर सिर खुजाते हुए उस हार में से कीमती हीरे, कोहिनूर हीरे से भी महंगे महंगे कीमती हीरे खींच कर तोड़े और वज्र समान दांत के बीच में रखकर फोड़ने लगे, चूर चूर करने लगे और खोल कर देखने लगे, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, कितने लोगों तो हार्ट अटैक आ गया, कुछ लोग तो भगवान को प्यारे हो गए, कुछ लोग कहने लगे महाराज नहीं चाहिए तो हमको दे दो, तोड़ क्यों रहे हो। हनुमान जी ने कहा तोड़ नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं। बोले इसमें क्या देख रहे हो। बोले देख रहा हूं कि इसमें मेरे प्रभु राम और सीता जी है कि नहीं। क्योंकि जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कुछ काम का। जिस वस्तु में मेरे राम और मेरी माँ सीता नहीं है वो वस्तु मेरी कुछ काम की नहीं है। हनुमान जी महाराज, तब जामवंत जी ने कौतुक मजाक करते हुए हनुमान जी को कहा, अच्छा महाराज जिस वस्तु में राम और सीता नहीं वो कुछ काम की नहीं? बोले नहीं। बोले तो क्या महाराज आपके शरीर में राम और सीता है? मार डालो शरीर को भी, फाड़ दो। बोले मैं शरीर को इसलिए टिका कर रखा हूं क्योंकि इस शरीर में राम और सीता है। बोले हमें तो दिख नहीं रहा है। बोलो बताओ बंधु दिख रहा है हनुमान जी के शरीर में राम और सीता? बोले नहीं। हनुमान जी से नहीं रहा गया और हनुमान जी ने अपने वज्र के समान नाखून को अपने छाती में डाला और दुनिया के बीच में फाड़ कर दिखा दिया कि हनुमान के हृदय में आज भी राम और सीता बैठे हैं। ये है हनुमान जी महाराज, भगवान के दास भक्त। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज लेकर आए हैं संजीवनी। सुसेन शेद ने, वेद ने उस संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी के जख्म पर लगाया और धीरे 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 सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण जी के प्राण वापस आने लगे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र सबसे पहले लक्ष्मण के जीवित सांस को देखकर सबसे पहले भगवान राम हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी के पास जाकर भगवान श्री रामचंद्र शोक मग्न होकर अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि हे हनुमंत, हनुमंत आज तूने हम पर, तूने मुझ पर जो उपकार किया है, रघुकुल की 21 पीढ़ी बीत जाएगी परंतु आपके इस ऋण को नहीं चुका पाएगी। हनुमंत आपके इस ऋण को नहीं चुका पाएगी। आज तूने मेरे प्यारे लखन को जीवित कर दिया, आज लक्ष्मण को तूने जीवित कर दिया है। इस प्रकार से लक्ष्मण को जीवित किया और लक्ष्मण जीवित हुए यह समाचार सुनकर रावण कुंभकर्ण के पास गया और कुंभकर्ण को कहा कि चलो युद्ध करना है। कुंभकर्ण ने कहा किसके साथ? बोले राम के साथ। क्यों? सीता का हरण करके लाया हूं। बोले जगदम्बा का हरण करके लाया है और सठ तू अपना जीवन चाहता है, तेरी मृत्यु निश्चित है, कुंभकर्ण ने कह दिया। लेकिन रावण के कहने पर कुंभकर्ण ने युद्ध किया और कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। तत्पश्चात मेघनाद, कुंभकर्ण मरा, रावण ने मेघनाद को भेजा, मेघनाद के साथ युद्ध। मेघनाद यज्ञ करने के लिए गुफा में गया, उसके यज्ञ की हानि करने के लिए अंगद जी गए। अंगद और हनुमान उसके यज्ञ की हानि करने के लिए गए और उस समय लक्ष्मण जी के बाण के द्वारा, क्योंकि मेघनाद को वरदान था 14 साल तक जो कभी खाएगा नहीं और कभी 1 सेकंड के लिए सोएगा नहीं वही व्यक्ति उसे मार पाएगा, लक्ष्मण के बाण से मेघनाद की मृत्यु हुई। अब रावण अकेला बचा है। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि प्रभु समझ जाओ, परंतु रावण समझा नहीं। बोले तू डर रही है, तू रावण के प्रकोप को नहीं जानती है। ये रावण परम पराक्रमी है, चलत दशानन डोलती अवनि। रावण जब चलता है पूरा ब्रह्मांड कांपता है। रावण जब बोलता था तो गर्भवती स्त्री अपना प्रसव कर देती थी। रावण यह इतना कह के निकला कि हे मंदोदरी, आज यह पृथ्वी का गोला कौशल्या नंदन से विहीन होगा या तेरे पति से विहीन। आज इस रणभूमि में या तो राम नहीं या रावण नहीं, आज दो में से एक को मरना होगा। इतना कह के रावण रणभूमि में निकला है। भगवान श्री रामचंद्र रावण के आमने सामने युद्ध तैयार हुआ। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, रावण इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मात्र बोलते हैं परंतु कुछ करते नहीं है। रावण इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोले भी और करे भी, और इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है मात्र करते हैं। रावण ने कहा, मैं आपका प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, मैं इस रणभूमि में युद्ध करने के लिए आया हूं, युद्ध प्रारंभ करो हमारे साथ। रावण ललकार रहा है, रावण का काल निकट आ गया और उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान श्री रामचंद्र सर्प के समान अपने बाण को चलाते हैं। चले बाण सपच जनुरगा, प्रथम ही हते हूँ सारथी तुरगा। चले बाण सपच जनुरगा, प्रथम ही हते हूँ सारथी तुरगा।
जन उर्गा प्रथम देव सारथी दुर्गा।
भगवान श्री रामचंद्र बाण चला रहे हैं, बोले उर्गा, उर्गा माने सर्प के समान भगवान रामचंद्र के बाण है। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र ने अपने बाण के द्वारा रावण के रथ को तोड़ डाला। रथ भी भंजी हती पताका गर्जा अति अंतर बल खाता। भगवान श्री रामचंद्र रावण को मारने का प्रयास, दस दस बाण एक एक साथ मारते हैं, परंतु रावण मरता नहीं है। दस दस बाण भाल दस मारे बिसरी गए चली रुधिर पसारे। दस दस बाण मार रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र के बाण लगते ही रावण के मस्तक टूट रहे हैं, परंतु टूटते ही फिर से जुड़ जाते हैं। पूनी पूनी प्रभु काटत भूज सीसा अति कौतुक की कौशल्या जैसा। दमाधार युद्ध छिड़ा है, दमासान युद्ध हो रहा है। आंखों टूके मुंह खोटू करूं जीवन आंखों खोटाड़ू। अरे अण हम जनना अंधारा मा क्या थाय हवे अजमाड़ू। प्रभु ने पड़तो मेली प्रभु नी पत्नी नू जो ने हरण करे एवा आज घरो घर रावण जोई। प्रभु ना तो नयन जरे रे भाई प्रभु ना तो नयन जरे रे भाई। कर सर पर सद हरि अमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे। हर हर सुन यवर्य पर यतियन कर नटवर मन हर भैर कर। अरे मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर नमे कण रण कट खरड़ खरड़ पद घूंगर रंग भर सुमेर श्याम मेरे दमासान युद्ध चला है।
ये साढ़ ये सारो तुम नारो बंद बहारो जग धारो जादूर ने कारो तुम नारो भरिये साधो के सारो तब तारू सारो प्यास ये पारो नजर तुम्हारे रुकियानो कह रहे
गोपनिया। भगवान बार बार रावण को मार रहे हैं, परंतु रावण मर नहीं रहा है। रावण के जो भी अंग को काट रहे हैं, समस्त अंग जुड़ने जा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र रावण विभीषण की परीक्षा दे रहे हैं। उस समय विभीषण जी भगवान को इशारा करते हैं, प्रभु। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु रावण की नाभि में अमृत कुंड है, जब तक आप रावण की नाभि में अमृत कुंड को नहीं सुखाओगे, तब तक रावण नहीं मरेगा। विभीषण की परीक्षा हो गई और उस समय रावण को मारने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने अपने मन में ठान लिया। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र रावण को मारने के लिए सोचे, यं तस्मै प्रथमं प्रादात् अगस्त्यो भगवान ऋषि ब्रह्मदत्तं महद्बाणं अमोघं युधि वीर्यवान्। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र को अगस्त ऋषि ने जो बाण प्रदान किया था, भगवान श्री रामचंद्र बैठे हैं और अगस्त जी के प्राण को संवाहन करके अब ये भगवान के हाथ का अंतिम बाण। भगवान श्री रामचंद्र ऋषि मुनियों के बजे हुए अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, देश में इकट्ठी हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए अपने धनुष पर बाण चला रहे हैं। जैसे ही भगवान राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, आकाश गरजने लगा, रावण के मस्तक पर गीत डोलने लगे, भयंकर शियार की आवाज होने लगी, रावण के हाथ से चक्र और त्रिशूल गिरने लगा, रावण के रथ के पहिए निकलने लगे, घोड़ों की लगामें झुकने लगी, रावण के मस्तक के ताज गिरने लगे, रावण का दाया अंग भड़कने लगा, ये ब्रह्मांड कांपने लगा, धरती डोलने लगी, समुद्र के पानी उछलने लगे, अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया, हिमाचल की चंद्राओं में ध्यान करने वाले ऋषि मुनियों का ध्यान भंग हुआ। अप्सरा हाथ में माला लेकर घूमने लगी, किसके गले में माला पहनाऊं, ब्रह्मांड नीचे से ऊपर डोलने लगा, रावण का रथ जमीन से 5 फुट ऊपर होने लगा। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र ने अपने धनुष पर एक साथ 31 बाण, 10 बाण रावण के 10 मस्तक पर, 20 बाण रावण की 20 भुजा पर और 1 बाण रावण की नाभि पर एक साथ 31 बाण मारे। तब जाकर जैसे आकाश से पहाड़ गिरता है, वैसे रावण इस पृथ्वी पर गिरा है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार रावण की मृत्यु हुई, भगवान श्री रामचंद्र की विजय हुई। श्री रामचंद्र भगवान की
जय।
भगवान राम आज जीते हैं, सीता को राम के कारागार से मुक्त किया और उस समय बहुत जल्द भगवान श्री रामचंद्र लंका से अपनी अयोध्या में वापस आए और अयोध्या में बहुत सुंदर उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। आइए सब लोग इस उत्सव में भाग लीजिए।
रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा,
रामचंद्र अयोध्या के राजा बने हैं। आज अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। प्रकार भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आए और अयोध्या में बहुत सुंदर उत्सव हुआ। आप सबको भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या में वापस आने की बधाई हो। मैं आशा करता हूँ विरार में भी इसी प्रकार राम राज्य चलता रहे। यहाँ पर 7 दिन की कथा में हमसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ कटु वचन निकल गए हो, अपना दास समझकर क्षमा कीजिएगा। और रामचंद्र का आज विजय उत्सव हो और केवल अयोध्या के लोग ही आनंद करें, ये ठीक नहीं है। हम लोग भी इस उत्सव में भाग ले। आइए प्रेम से सब लोग साथ में नाचकर साथ में कीर्तन करें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा हरे
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे
आइए नाचिए सभी लोग प्रेम से।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम